कार्तिका आहान के घर से वापस आ चुकी थी। वहां पर उसने आहान का एक अलग ही रूप देखा तो वो काफी घबरा गई थी। उसने अक्षरा को उसका काम करने से मना कर दिया था। हालांकि अक्षरा ने पहले उससे काफी लंबी बात की थी, लेकिन जब कार्तिका घर पहुंची तो उसके तीनों भाई बहन घर से गायब थे। कार्तिका ने उन्हें घर में सब जगह देखा, वो उसे कहीं पर भी नहीं मिले। कार्तिका उनके बिना रोने लगी। उसने जल्दी से अक्षरा को कॉल किया और कहा, अक्षु दीदी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, पता नहीं कीर्ति अर्जुन और आदित्य कहाँ चले गए हैं। इतनी रात को पड़ोसियों के बच्चों के घर भी खेलने नहीं जाते, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपकी इतनी जान पहचान है, मैं पुलिस स्टेशन पहुँचती हूँ, प्लीज़ आप वहाँ पर मेरे लिए बात कर लीजिएगा। पुलिस का नाम सुनते ही अक्षरा ने जल्दी से कहा, तुम तो इतनी ही देर में पागल हो गई हो, चिंता मत करो, वे बिल्कुल ठीक हैं और मेरे साथ हैं। बोलते हुए अक्षरा ने तीनों बच्चों की तरफ देखा जो उसके घर में एक कमरे में सोए हुए थे। अक्षरा ने उन्हें देखकर एक ईविल स्माइल करते हुए कहा, देखो अभी तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो उम्र भर उनकी शक्ल देखने के लिए तरस जाओगी। दीदी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैंने पहले आपके लिए इतना कुछ किया है, आपको चाहत और आहान की हर एक मोमेंट की अपडेट दी, उसके छोटे भाई के साथ प्यार का नाटक किया, मेरे भाई बहन बहुत मासूम हैं, उन्हें जाने दीजिए वरना अच्छा नहीं होगा, कार्तिका ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। अक्षरा के सामने कार्तिका की कोई औकात नहीं थी, फिर भी अपने भाई बहनों की बात आने पर कार्तिका चुप नहीं रह सकती थी। कार्तिका ने सुबकते हुए सख्त लहजे में कहा, भाड़ में गया आपका काम और आपका वो आहान ओबेरॉय, मुझे मेरे भाई बहन मेरे पास अभी और इसी वक्त वापस चाहिए, मैं आपके घर आ रही हूँ, कोई तमाशा करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना मैं आहान को जाकर आपका सारा सच बता दूंगी। कार्तिका की धमकी देने का अक्षरा पर कोई असर नहीं हुआ, उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, अक्षरा गोयनका को धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत की दाद बाद में दूंगी, एक बार अपनी औकात का तो सोच लिया होता, अब तक सोचा था कि तुम्हारे भाई बहनों को अच्छे से रखूंगी, लेकिन तुम्हारे तेवर और ये बदतमीजी उनके ऊपर भारी पड़ेगी, चुपचाप मेरा काम जल्द से जल्द करो और ले जाओ इन लोगों को, वरना तुम्हारा पता नहीं मैं आहान ओबेरॉय तक तुम्हारी सच्चाई के सबूत पहुंचा दूंगी, याद है ना कैसा इंसान है वो, अक्षरा कार्तिका को ब्लैकमेल करने लगी थी। अक्षरा कार्तिका की मजबूरी को अच्छे से जानती थी, वो उसके भाई बहनों का नाम लेकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कार्तिका कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई, बस उसके सुबकने की आवाज़ अक्षरा को सुनाई दे रही थी। अक्षरा ने गहरी सांस ली और एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, देखो भलाई इसी में है तो मेरी बात मान लो, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुमने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, आई प्रॉमिस मेरा काम होते ही मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को सुरक्षित जगह पर भेज दूंगी और कभी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। एक बार फिर सोच लो कार्तिका, एक नर्स की सैलरी से तुम अपने भाई बहनों का खर्चा निकाल पाओगी, अब तो ये छोटे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, उनके सपने भी बड़े होंगे, तब क्या करोगी तुम। कार्तिका ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, क्या करना होगा मुझे, और हर बार की तरह बहाने मत बनाइएगा, मुझे जल्द से जल्द आपका काम खत्म करना है। तुम जल्द से जल्द नहीं कर पाओगी क्योंकि चाहत का बच्चा भी बहुत छोटा है, मुझे वो बच्चा चाहिए कार्तिका, ज्यादा नहीं तो तुम्हें एक महीने का इंतजार करना ही होगा, अक्षरा ने जवाब दिया। बच्चा चुराने की बात सुनकर कार्तिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसे लगा नहीं था कि अक्षरा उसे ऐसा कोई काम सौंपेगी। किसी भी बच्चे का अपनी माँ के बिना रहना क्या होता है, कार्तिका से बेहतर कौन जान सकता था। अर्जुन और आदित्य के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसने दोनों बच्चों को अपनी माँ के बिना बहुत मुश्किल से संभाला था। पुरानी बातें याद करके अक्षरा की आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया। उसने कहा, प्लीज अक्षु दीदी ये मत करवाइए, बच्चा बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुम्हें काम बता दिया है, करना या ना करना तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन ना कहने से पहले अपने भाई बहनों के बारे में सोच लेना, अक्षरा ने जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया था। कॉल कट हो जाने के बाद अक्षरा वहां पर बैठ गई। उसने अपने मन में कहा, इन बच्चों को वहां से निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, आखिर पिछले कुछ दिनों में मैं उनकी प्यारी दीदी बन गई थी जो रोज गिफ्ट लेकर आती थी। मैं अच्छे से जानती हूँ कार्तिका, तुम मेरा काम जरूर करोगी, इस बच्चे के दम पर मैं आहान को फिर से हासिल करूंगी, चाहत कभी अपने बच्चों के ऊपर नहीं चुनेगी आहान को, इतना काफी होगा तुम दोनों के बीच नफरत पैदा करने के लिए, वैसे भी आहान ओबेरॉय के लिए सबसे ज्यादा मायने वो खुद रखता है, चाहत उसे छोड़कर अपने बच्चों को सिलेक्ट करेगी, उसी में वो उससे नफरत करने लग जाएगा। ओ माय गॉड कितना ब्रिलियंट प्लान बनाया है मैंने, और एक छोटा सा बच्चा मेरा साथ दे रहा है, ये बच्चे कितने क्यूट होते हैं, यहाँ ये तीन बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं तो वहाँ वो मासूम बच्चा मेरा फ्यूचर बनाने में हेल्प करेगा। जिस दिन आहान ने अक्षरा को अपने घर से बाहर निकाला था उसी दिन से वो बदला लेने के बारे में सोच रही थी, उसे इंतजार था तो बस चाहत के डिलीवरी होने का, ताकि बच्चा चुराकर वो आहान और चाहत को अलग कर सके। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हो जाने के बाद आहान और चाहत अपने कमरे में थे, बाकी लोग भी सोने को जा चुके थे। चाहत ने धैर्य को सुला दिया था। उसके बाद वो आहान की गोद में लेटी हुई थी और आहान धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। आहान ने नोटिस किया कि चाहत खोई हुई है। उसने चाहत से पूछा, क्या हुआ डॉल, आज इतना थकने के बाद भी तुम्हें नींद नहीं आ रही है? डोंट टेल मी कि तुम अभी भी कार्तिका के बारे में सोच रही हो। आहान के बोलते ही चाहत उठकर बैठ गई थी। उसने आहान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ आहान। आपने मुझे कहा था कि आप मुझे सब कुछ बताएंगे। सच कहूँ तो मेरा ज्यादातर टाइम यही सोचते हुए बीतता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आने लगा। आप दुनिया से कितना भी छुपा लो, लेकिन अभी भी आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आहान ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, खुद पर काबू नहीं कर पाता हूं, और ये सब विजय ओबेरॉय और राजवीर शर्मा की वजह से हुआ है। बोलते हुए आहान के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। राजवीर शर्मा का नाम आते ही चाहत की नजरें झुक गई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आपको नफरत नहीं होती कि मैं उसी इंसान की बेटी हूँ जिसने आपके साथ इतना सब किया? आहान ने अपने हाथ से चाहत का चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जरूर नफरत करता अगर इन सब में तुम्हारी कोई गलती होती। तुम्हें याद नहीं है डॉल, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। उस इंसान ने तुम्हारे साथ भी कुछ कम बुरा नहीं किया था। क्या किया था आहान? उन्होंने मुझे कुछ याद नहीं है, माँ ने भी मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने बस यही कहा कि वो हमें जलाकर मारना चाहते थे और इसलिए वो मुझे लेकर भाग कर आ गई, चाहत ने मासूमियत से पूछा। आहान को एक पल के लिए हैरानी हुई। उसने चाहत को उठाकर कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है डॉल? उस घटिया इंसान ने अपने फायदे के लिए तुम्हें बेचना चाहा था।
जैसे ही चाहत ने सुना वो सकते में आ गई। चाहत के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। आहान उसके जज्बातों को समझ सकता था। उसने चाहत को अपने सीने से लगाया और सहलाकर कहा, जानता हूं तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो कि कोई बाप इस हद तक कैसे गिर सकता है। विजय ओबेरॉय जैसे शख्स के दोस्त से और क्या उम्मीद की जा सकती है? उसने अपने बेटे को पागल करने की कोशिश की तो एक ने अपनी बेटी को बेचकर उससे पीछा छुड़ाने की। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे आहान? चाहत ने भारी आवाज से पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि राजवीर ऐसा कुछ कर सकता है। यकीन करना मुश्किल है डॉल, पर फिर भी उसने ऐसा किया। तब तो तुम बच्ची थीं, नहीं समझ पाई होगी, लेकिन अब तो समझो, उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जो इंसान किसी को जान से मारने की हद तक सकता है, उसके लिए किसी भी इंसान का सौदा करना कौन सा मुश्किल काम है, आहान ने बताया। चाहत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बंद थीं और याद था तो सिर्फ इतना कि एक दिन अचानक उसकी माँ उसे रात के अंधेरे में घर से भागकर अपने चचेरे भाई के घर पर लेकर गई थी। चाहत ने गहरी सांस ली और फिर आहान से अलग होकर पूछा, उन्होंने आपके साथ क्या किया था आहान? आहान ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। जब भी इस बारे में जिक्र होता था तब आहान के दिमाग में पुरानी बातें ताज़ा हो जाती थीं, कैसे विजय और राजवीर ने उसे पागल करने के लिए उसके साथ हैवानियत की थी। आहान ने इसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। जब भी वो इस बारे में सोचता उसे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन आज वो अपनी तकलीफ को साइड में रखकर पहली बार इस बारे में किसी को बताने जा रहा था। आहान ने आंखें खोली और चाहत से कहा, एक 7 साल के बच्चे को उस गलती की सजा मिली थी जो उसने कभी की ही नहीं। गलत कोई और था, बस अपना पाप छुपाने के लिए उस मासूम के साथ अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। आज पहली बार चाहत ने आहान की आंखों और आवाज में इमोशंस को महसूस किया था। वो इमोशंस प्यार के नहीं बल्कि दर्द के थे। उसके बाद आहान चाहत को सब कुछ बताने लगा, कैसे उसकी तकलीफ की शुरुआत हुई थी, एक ऐसी तकलीफ का सफर जिसकी भूल भुलैया में उसका दिमाग और वो आज भी उलझे हुए थे।